Today, we will discuss about the lesson pollution in your senior secondary book. For this, as I have already told you that today we will discuss about the pollution. You have already learnt about the environment and its component in the earliest lesson. You have also studied the importance of maintaining a life-supporting environment in class 10th. But the environment has undergone many changes over the period of time. Population explosion in the recent time has resulted in a number of environmental problems. The population of India has crossed the figure of 1.4 billion and the world population is estimated to have touched the 6 billion mark. To meet the demands of food, housing and energy, environmental resources are being exploited at a fast pace. Over-exploitation of resources and human activities has resulted in many environmental problems. What kind of environmental problems are we are discussing about it? Sir, ये मैंने अभी जैसे बात किया environmental problems की, ये किस तरीके के environmental problems होते हैं जो एटमॉस्फेयर को और एनवायरमेंट को हार्मफुल है?
डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा. ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसी भी एक्टिविटीज का, किसी भी डेवलपमेंट का अगर हम इसे एफिशिएंट यूज नहीं करेंगे तो हमें इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो हमने यूज किया है उससे जो एयर, उससे हमारी एयर, वाटर, लैंड, नॉइस, सब तरह के पॉल्यूशन हमारे को पूरी तरीके से हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है,
उसको अफेक्ट कर,
उसको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर.
मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि पॉल्यूशन आखिरकार है क्या? ये ऐसी क्या समस्या है जिसको, मतलब कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं?
डॉक्टर साहब, एज यू, जैसे आपने बोला, द अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरमेंट, स्पेशली एयर, वाटर एंड लैंड, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मैनी दिस इज एडवर्सली अफेक्टिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटीज एंड कल्चरल एसेट्स लाइक हेरिटेजेस. They are all affecting our because of pollution.
So these are the agents of pollution. तो जब हमने pollution की बात की है तो मैं जानना चाहूंगी कि कितने प्रकार के होते हैं ये pollution?
मोटे मोटे तौर पर डॉक्टर साहब, हम लोग जिस तरह का भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम हवा का यूज करते हैं, एयर, जिससे हम एयर पॉल्यूशन उसमें आता है, हम पानी का यूज करते हैं नहाने धोने, उसमें वाटर पॉल्यूशन आता है, हम जमीन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम कहीं आते हैं जाते हैं, अपना घर बनाते हैं, वो हमारे को लैंड पॉल्यूशन करता है जिससे. और इसी तरीके से हम लोग जब कहीं आते जाते जो रस्ते में कई तरह की शोर शराबी होते हैं, वो भी हमारे को, हमारे पूरे जो ह्यूमन लाइफ है उसको डिस्टर्ब करते हैं.
जैसे आजकल हम अखबारों में और मैगजीन्स में ये सब पढ़ते हैं कि आज इस तरीके का पॉल्यूशन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इतना हाई है, सल्फर डाइऑक्साइड लेवल इतना हाई है, ये किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है?
जी,
तो मैं जानना चाहूंगी कि एयर पॉल्यूशन के बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए.
हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल. जो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं और जो हमारे 24/7 हमारी, मतलब अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को, चाहे हम सो रहे हों, चाहे जाग रहे हों, चाहे कहीं पे भी हों, हम कहीं उससे बच नहीं सकते. मतलब तो जैसे उसमें एक एयर पॉल्यूशन में बहुत सारी ऐसी गैसेस आती हैं जो कि हमारे को बहुत डिस्टर्ब करती है, मतलब हमारी, जिसमें कार्बन, डे टू डे लाइफ को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और ये मेनली प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कम्बशन ऑफ फ्यूल इन फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स जो हैं, पावर स्टेशंस हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उनमें ये निकलती है. और इसकी वजह से हमारे पूरे के पूरे जो हमारा जो सिस्टम है, जिसमें मतलब इनके जो जो कोयला जलता है या उससे हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है, हमारे को सांस लेने की बहुत सारी, आज आप कई हॉस्पिटल्स में जाइए, पूरे जो एक रेस्पिरेटरी, मतलब पूरा एक वो यूज होता है, मतलब डॉक्टर्स, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो इस तरह की हम लोग इन सब चीजों से कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे मैंने बताया ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, और
सल्फर डाइऑक्साइड
है, ये चीजें इतनी, और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इतनी खतरनाक और हार्मफुल गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को आप थोड़ा बहुत कम कह सकते हैं, लेकिन मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपको बता दूं कि उसका रोल बहुत बड़ा है, और वो पूरे के पूरे जो हमारे जो रेस्पिरेटरी जो जिसमें डीजल एंड पेट्रोल जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका यूज होता है, और बहुत ही मतलब मैं उस आपके माध्यम से स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि वो हमें इसका बहुत ही एक कंजर्वेटिव, मैं खुद यहां पे भी एक कंक्लूजन के साथ कहूंगा कि हमें एक कंजर्वेटिव यूज हमारे को इनका यूज करना चाहिए। अगर पॉल्यूशन को, चाहे वो एयर हो, चाहे नॉइस हो, चाहे वाटर हो, अगर हमें इनका सस्टेनेबल यूज जो है, सस्टेनेबल यूज हमारे को करना बहुत जरूरी है, और इसी से ही हम लोग सभी समाधान निकाल सकते।
तो लर्नर्स, हम लोग बात कर रहे हैं सम मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स की, जिनमें हमने बात की है कार्बन डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, इट्स अ वन ऑफ द मेजर गैसेस विच कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन। इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कम्बस्टन ऑफ फ्यूल इन फैक्ट्रीज, पावर स्टेशन, हाउस होल्ड। सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज produced by the burning of coal in powerhouses and automobiles. It causes chlorosis and necrosis of plants, irritation in eyes and injury to the respiratory tract. अब जब हमने बात की है एयर पोल्यूशन की, तो मैं स्मोग का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि स्मोग जो होता है वो हमारे प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, एज अ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए तो है ही। आखिर ये स्मोग है क्या
डॉक्टर साहब? स्मोग, जैसे स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मॉल ड्रॉप ऑफ फॉग। ये मतलब आप जब आप नॉर्मली देखते हो सुबह, जिसको आप कई तरीके से बोल सकते हैं, मतलब धुंध कह सकते हैं, मतलब कोहरा भी कह सकते हैं, ये बड़ा मतलब उस फॉर्मेट में निकलता है स्मोग में। और ये निक्रो, आपने कई प्लांट्स जो देखे होंगे जिन पत्तों में देखा होगा,
वो पीलापन आ जाता है और डेडनेस आ जाती है
जी डॉक्टर साहब। और आपने कई पीस वगैरह जो मटर होती है और भी ऐसी चीजें हैं जिनमें आपने पत्तों पे लाइनिंग देखी है, मतलब पूरा का पूरा, और आप उनको देखने के बाद आप उन्हें खरीदना भी नहीं चाहते हैं, मतलब। तो ऐसी चीज जब ये वो इतनी हार्मफुल होती है, लेकिन लोग सस्ते चीज के चक्कर में वो उनको ले लेते हैं, और बल्कि उनको इसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस, मतलब इस प्रॉब्लम को, मतलब।
अच्छा, तो,
जी
सो कुछ डोमेस्टिक एयर पोल्यूटेंट्स भी मेरे ख्याल से एक रोल प्ले करते हैं, जैसे सिगरेट्स, बीडी, सिकार, ये चीजें भी हमारे एनवायरमेंट को हार्मफुल है
डॉक्टर साहब। मैं आपको जैसा आपने बताया केरोसिन ऑयल है, टबैको है, और इवन नॉर्मल से नॉर्मल जो चीजें हैं, फायरवुड है, हम जो भी कुछ ऐसा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो उसको डिस्टर्ब करता, पोल्यूशन क्रिएट करता, और हमारे पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करता। जैसे ओजोन डिप्लीशन हुआ, उसमें अब एक तरफ हम कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है कि डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी एसेंशियल, हमें विकास आज की जरूरत है, और लेकिन अगर हम लोग उसका एक कंजर्वेटिव यूज करेंगे और एक सस्टेनेबल यूज करेंगे, तो उससे विकास ज्यादा अच्छा होगा और बहुत ही लॉन्ग टर्म रहेगा, मतलब।
तो जैसे मैंने अभी डोमेस्टिक एयर पॉल्यूटेंट्स की बात की है, इट कॉजेज सफोकेशन, आई एंड लंग डिजीजेज एंड लो विजिबिलिटी। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि एयर पोल्यूशन कैसे इफेक्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर को। अब हम बात करना चाहेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटन, गैशियस एंड पार्टिकुलेट। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग गैशियस एयर पोल्यूटेंट, एज यू कैन सी इन योर लेसन, देर इज अ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, बट हाउ? कम्बस्टन, एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन। कम्बस्टन इज अ टेक्निक that is used for controlling those air pollutants that are in the form of organic gases or vapors. In this technique, the organic air pollutants are subjected to flame combustion technique. In this technique, organic pollutants are converted into less harmful product and water vapor. Absorption is a process in which substance penetrate into another substance like scrubbers. In this technique, gaseous pollutants are passed through absorbing materials like pollutant present in the gaseous effluents. Thus, the air coming into scrubber is free from pollutant and it is discharged into atmosphere. Adsorption is a process in which a substance sticks to the surface of another substance. In this technique, gaseous effluents are passed through porous solid absorbent Kapton containers. The gaseous pollutant stick to the surface of the porous material and clean air passes through. So these are some of the methods by which we can prevent the air pollution. Now we will discuss about the next type of pollution, that is water pollution. Sir, aap mujhe batayenge ki kya water pollution is, what is it exactly, and kya sources hain in water pollution ke?
Ji, doctor sahab, pehle main water pollution jo hai uske jo paribhasha hai, jo uski definition hai, main usi pe kahunga jisse hamare student labhanvit ho. Aur water is any kind of physical, biological or chemical change in water quality that adversely affect living organism or make water unsuitable for desired use of it is called water pollution. Jab hum pani jo hai, hum aisa hum log bahut soch samajh ke pani peete hain, hum dekhte hain ki matlab agar hum koi pani nahi pee rahe to samajh lijiye ki kahin na kahin wo pani mein kisi tarah ki koi kharabi hai, koi pollutants hain jiski wajah se hum wo pani nahi peete. Hum RO jaise hum घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो इसको एक्वागार्ड है, आरओ है, उसको हम प्यूरिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो शायद पॉल्यूटेड वाटर है, शायद मिक्सचर है, मतलब तो हम लोग आरओ के थ्रू उसको क्लीन करते हैं और उसको
प्यूरिफाई करते हैं.
इवन कई जगह तो आप बताएं कि रिसाइकिल होकर के पानी को पिया जाता है, मतलब
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट.
जी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. और इनको जो अफेक्ट करता है, जो इनको
इसमें कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी होते होंगे जो पोल्यूट करते होंगे, जैसे मिनरल्स फ्रॉम रॉक एंड डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल एरोजन वगैरह, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज हुए इसके पोल्यूशन के.
जी डॉक्टर,
तो मैन मेड सोर्सेज कौन से होते हैं?
देखिए, जो मैन मेड सोर्सेज जो होता है, जैसे अब बहुत हमारी बहुत सुंदर नदियां हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, गंगा है, यमुना है, सरकार उनके लिए क्लीनिंग एक्शन प्लान बनाती है. तो वो क्यों बनाए जाते हैं क्लीनिंग? कहीं सरकार ये महसूस करती है कि उसमें डोमेस्टिक सीवेजेस जो हैं वो उससे कनेक्ट हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो उससे कनेक्ट हैं, और जो केमिकल वेस्ट हैं वो उससे कनेक्ट हैं. तो जो हमारे डोमेस्टिक में जो आप कह रहे थे उसमें यही आता है कि हम लोग जैसे हम लोग नहाते हैं, उससे जो पानी जाता है वो जमीन के अंदर जाता है, वो एसिडिफाइड एक तरीके से पूरे सॉइल को पॉल्यूट करता है, वो पानी जो लैंड को पॉल्यूट करता है. और वहां इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जैसे मान लीजिए ग्रीन हाउसेस जब गर्म होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो आपको एक बात मैं बता रहा हूँ कि मैंने कई जगह देखा है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक कवर किए जाते हैं, लेकिन कई बातें ऐसी जो कि और भी बड़ी हो सकती थी, लेकिन हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे उनको ध्यान में रख के किताबें बनाई जाती. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो शायद बच्चे नहीं समझ पाते हैं वो जल्दी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वाटर टेबल है, इवन जो वाटर टेबल है वो नीचे जा रहा है, मतलब. तो इससे कई जगह पहले आप देखते थे 10 फुट पे पानी मिल जाता था, 20 फुट पे आराम से मिल जाता था पानी, लेकिन आज आपको वाटर आज 100 फुट पे भी पानी कई जगह नहीं मिलता. तो इसका मतलब उधर का वाटर टेबल जो है वो नीचे गया है.
तो लर्नर्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी वाटर पोल्यूशन के बारे में, हमने बात की सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन के. मैं बताना चाहूंगी अपने लर्नर्स को कि वाटर पोल्यूटेंट्स दो तरीके के होते हैं, जिनमें नेचुरल सोर्सेज हैं और मैनमेड सोर्सेज हैं. मैनमेड सोर्सेज में हमने बात किया डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की. तो अब हम बात करेंगे कि इस वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए. मैं इस तरीके का जो इफेक्ट, अच्छा मैं सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो इफेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन के, आपने बताया कि वाटर टेबल, ये ह्यूमन लाइफ को कैसे और ज्यादा इफेक्ट करते हैं, किस तरीके की बीमारियां मेरे ख्याल से क्योंकि अगर कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस ऐड हो रहा है आपके वाटर उसमें तो पानी में आपके ऐड हो रहा है तो फिर आप उसमें किस तरीके की दिक्कतें, क्योंकि इससे एक्वेटिक लाइफ भी अफेक्ट करती होगी, इनफैक्ट एडवर्सली अफेक्ट करती होगी. तो मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके से ये पॉल्यूटेड वाटर क्या ये किसी बीमारियों का भी कारण बनता होगा.
जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जो जो डोमेस्टिक सीवेज हैं या इंडस्ट्रियल सीवेजेस हैं या जो कॉलोनी सीवेजेस भी होते हैं, जो बड़े बड़े नाले आप बोलते हैं, वो वहां जाते हैं और उसको उसको वो डिस्टर्ब करते हैं. तो आपको एक बात बताएं डॉक्टर साहब कि कई जगह आपने देखा होगा कि कई बड़ी बड़ी कॉलोनीज के आगे पानी इकट्ठा हो जाता है. पानी इकट्ठा हो जाता है डॉक्टर साहब, तो वहां पर कई तरह की मतलब बीमारियां जो हैं जो होती है, मतलब उसको जिसमें आप, मैं आपको एपिडेमिक, इवन मैं उसे एपिडेमिक भी बोलना मैं चाहूंगा, बड़े पैमाने पे वो पूरी एरिया को डिस्टर्ब करती हैं. जैसे
हैजा
है,
कॉलरा
है,
ट्यूबरक्लोसिस, जॉन्डिस, डिसेंट्री, टाइफाइड, डायरिया,
तो
ये सब मतलब
इवन मैं आप जैसे अभी मैं लेटेस्ट प्रॉब्लम बताता हूँ आपको कि अभी देखिए जो डेंगू है, डेंगू का मच्छर वहीं इकट्ठा होता है जहां पर खूब सारा पानी, या इवन आपको मैं यहां तक बताऊं कि घर के ऊपर जो छोटा सा कूलर होता है उसमें भी अगर पानी सड़ जाता है तो मच्छर बन कुछ दिन बाद नजर आने लग जाता है. और वहीं से जो मच्छर चालू होते हैं, अभी तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूं, बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनमें इस तरह की बड़े पैमाने पर होता है और वो डेंगू का एक आपने देखा ही होगा बहुत. इवन आपको मैं बता रहा हूं कि जब उड़ीसा में जब फ्लड आया था कई जगह पानी इकट्ठा हो गया था और उसमें उसने पानी इकट्ठा होने की वजह से वहां ये सब हुआ, हैजा फैला, जिसकी वजह से वहां पर
तरह तरह की बीमारियां,
पशुओं की बीमारियां हुई और बहुत जानमाल का नुकसान हुआ डॉक्टर साहब.
तो जो ये कंटेमिनेशन ऑफ सी वाटर भी कभी कभी मतलब उसमें तो काफी इकोलॉजिकल इम्बेलेंसेस क्रिएट हो जाते होंगे क्योंकि हम एक एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं. जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जहाज से जो ऑयल या डीजल का डिस्चार्ज हो जाता है, कभी कभी ऑयल टैंक्स उसमें डूब जाते हैं, तब उसमें भी तो सी जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो भी तो डिस्टर्ब होती होगी, उसमें फिशेस वगैरह. तो मेरे ख्याल से एक पूरी फूड चेन बन जाती है कि क्योंकि हम लोग फिशेस का कंजम्पशन करते हैं और वो हमारे ही खाने में आती है और वो कहीं ना कहीं अगेन मनुष्य को वो परेशान मतलब परेशानी पैदा होती है उससे. तो सर मैं जानना चाहूंगी कि जब हम वाटर पोल्यूशन और इन सब की बात करते हैं तो हम दो महत्वपूर्ण टर्म्स का यूज जरूर करते हैं, एक यूट्रोफिकेशन और एक बायोमैग्निफिकेशन. मैं जहां तक मानती हूं यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जब हम अच्छी उपज की वैरायटीज या क्रॉप्स यूज करते हैं और उसके लिए हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स डालते हैं तो वो जो फर्टिलाइजर और जो होते हैं वो सरफेस वाटर में जाके मिल जाते हैं और वो जाके नीचे नाइट्रेट्स एंड वो एक ग्रीन एल्गी फॉर्म कर देते हैं, तो इसी को कहते हैं यूट्रोफिकेशन.
बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं. और मैं आपको बताऊं कि उस यूट्रोफिकेशन से जो ग्रीन एल्गी वगैरह जिसे आप शायद कुछ लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं शायद, तो जो एल्गी जो है उसको उसकी वजह से वहां ऑक्सीजन जो एक्वेटिक लाइफ जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से वहां पर कई तरह की परेशानी है, पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन सबको बड़ा नुकसान होता है.
तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है?
बायोमैग्निफिकेशन डॉक्टर साहब जो जब हम डीडीटी वगैरह का वाइडली यूज करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में वंस दे एंटर, तो देयर कॉन्सेंट्रेशन कीप्स ऑन क्रीपिंग विद ईच ट्रॉपिक लेवल. एज अ रिजल्ट एक्युमुलेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ टॉप कंज्यूमर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम.
तो एंट्री ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन एंड देयर एक्युमुलेशन इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन द वेरियस लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन. जैसे अभी हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम टाइप ऑफ पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, आजकल आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो मैं ये जानना चाहूंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और मैं अपने लर्नर्स को बताना चाहूंगी कि उनके बिहाफ में मैं पूछना चाहूंगी कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है.
जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल मेरे को पॉल्यूशन के बाद अगर मतलब मैं इस चर्चा में पॉल्यूशन के बाद अगर सबसे ज्यादा खुशी हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आपसे चर्चा करते हुए हो रही है डॉक्टर साहब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है मतलब एक सोच है, मतलब मैं ये कहता हूँ कि मतलब आज की सोच होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए, देश की होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, समाज की होनी चाहिए। तो मैं ये यहाँ कहना चाहूंगा इन ए टर्म वाइज इट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन और एंड कंजर्वेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हम अपने साधनों का प्रयोग इस प्रकार से करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उन साधनों का प्रयोग कर सकें और वो किसी भी प्रकार से उनसे दूर ना रह पाए, वो उनको ना मिल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो कल उन्हें भी मिलना चाहिए और इस तरह से फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम चाहिए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के की सभी बातों को समझें और उसको अपने जीवन में लाएं। हम अपनी चीजों का प्रयोग बड़ा एक जस्टिफाइड और जिसे कहते हैं जुडिशियसली, मतलब आप कहें कि बड़ा इकोनॉमिकल यूज करें हम चीजों का, जैसे वाटर है, तेल है, बिजली है, तो हम इन चीजों का अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं हमारे एग्रीकल्चर में हैं उनका यूज हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग यूज करें और जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियां उन सभी नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सकें जिसको आज हम कर रहे हैं।
तो ये तो बात हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब मैं अपने लर्नर्स को बताना चाहेंगे कि हम अभी जैसे वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे थे तो हमने उधर उसके कंट्रोल के बारे में डिस्कस नहीं किया। मैं कहना चाहूंगी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन कैन बी लाइक बाय ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू रिवर्स, सेपरेट चैनल्स फॉर रिवर एंड सीवेज वाटर, अवॉइड कंटेमिनेशन ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स बाय वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एक्सेट्रा, नॉट थ्रोइंग वेस्ट फूड मटीरियल, पेपर, बायोडिग्रेडेबल वेजिटेबल्स एंड प्लास्टिक इनटू ओपन ड्रेन्स, सेटिंग अप सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, यूज ऑफ सेप्टिक टैंक्स इन हाउसेज टू अवॉइड डायरेक्ट आउटलेट ऑफ फेसियल मैटर एंड अदर वेस्ट, एफ्लुएंस फ्रॉम डिस्टिलरीज एंड सॉलिड वेस्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर डाइवर्टेड टू बायोगैस प्लांट टू जनरेट एनर्जी। Now we will discuss about the treatment of sewage. The sewage can be treated by a modern technique involving three steps: primary treatment, secondary treatment and tertiary treatment. Primary treatment sewage is passed through a grinding mechanism. This is then passed through several settling chambers and lime is added to the neutralized to it. The neutralized sewage still contains a large number of pathogenic and non-pathogenic organism and sufficient amount of organic matter. In the secondary treatment, these neutralized effluents are passed through a reactor called UASP, a flow anaerobic sludge blanket. In this reactor, the anaerobic bacteria degrades the biodegradable material into neutralized effluents. In this process, the foul odor and methane are released and the sewage is converted into the clean water. This water is sent to aeration tanks where air and bacteria are added to it. This process is called biological and secondary treatment. The water obtained as a result of secondary treatment is still unfit for drinking and needs further purification. This is done by tertiary treatment. In this treatment, which is disinfecting process, final traces of disinfecting bacteria and any dissolved organic solids are removed. Then the chlorination, evaporation, exchange, absorption methods are employed to clean water. So, till now we have discussed about the air pollution, water pollution. Now we'll discuss about the soil pollution. Sir, मैं जानना चाहूंगी कि सॉइल पोल्यूशन के क्या सोर्सेज होते हैं, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं एंड कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, जब एडिशन, जैसे मैं डेफिनेशन वाइज, दिस इज एडिशन ऑफ सब्सटेंस दैट चेंजेस the quality of soil by making it less fertile and unable to support life is called soil erosion.
Soil pollution.
जो soil pollution जो है, जिसे आप land pollution भी लोग generally बोल जाते हैं, लेकिन soil pollution और land pollution बहुत land is a मतलब territorial pollution कहलाता है मतलब. तो जो soil pollution है वो ये है कि जैसे कहीं आप मान लीजिए खूब सारा एक बहुत ही fertile land हो, बहुत सुंदर जहाँ पे खूब crop productions वगैरह होता हो और high yielding varieties वाले चीजें होती है, वहां पर अगर आप मान लीजिए कि बहुत सारा पेस्टिसाइड है, आप उनका यूज करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि मतलब धीरे धीरे उस जो उसकी उपजाऊ है, जो फर्टिलिटी जो है जो लैंड की, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है. तो हमारे को ऐसे कुछ साधन जरूर अपनाने चाहिए जिससे कि वो लैंड फर्टाइल रहे, हाई यील्डिंग रहे, जिससे कि वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें और लोगों को चीजें मुहैया करा सकें. लेकिन जहां तक सॉइल पोल्यूशन किन वजहों से होता है तो मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, विंड जो होता है उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है. कई बार आंधियां चलती हैं, जो ऊपर की जो परत होती है मिट्टी की वो एकदम चली जाती है,
डिप्लीट हो जाती है.
फ्लड आता है उससे भी डिप्लीट हो जाती है. इससे वो उसकी ये एक फॉर्म ऑफ मतलब सॉइल पोल्यूशन है. लेकिन जो आज खास जिन पे देख रख मैं करना चाहूंगा स्टूडेंट से, वो प्लास्टिक बैग्स के बारे में बोलूंगा कि वो प्लास्टिक बैग्स का कम यूज करें और जितने हैंडमेड चीजें हैं, बॉटल्स वगैरह हैं, ये सब उन्हीं जगह पे फेंकें जहां पर उनकी स्थान निश्चित करा गया है. अब आप किसी अच्छी जगह पर जहां पेड़ वेड़ अच्छा सा उगा हुआ है वहां पर किसी तरह का कूड़ा वगैरह आप डालते हैं, कोई वेस्ट डालते हैं, चाहे वो आजकल डिजिटल वेस्ट भी होता है. अब आप एक बल्ब है उसको चूरा करके आप चूरा फोड़ देते हैं आप, मतलब तो यूं समझिए वहां पर वो मिट्टी को तोड़ता है मतलब. तो इस तरीके से वहां पे भी वो सॉइल पोल्यूशन को क्रिएट करता है. जैसे इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं, जैसे आप, मैं बताऊं कि आपने कई बार दिल्ली में आप यहाँ पे देखा होगा कि कई बार एकदम पूरा धुंधला हो जाता है. तो डॉक्टर साहब आप ये देखिए कि आप एक NTPC का वहां बदरपुर प्लांट है आप देखेंगे तो कई बार वहां से फ्लाई ऐश उड़ती है मतलब.
अच्छा अच्छा.
और वो पूरा का पूरा एक बहुत बड़े दायरे को मतलब पूरा धुंध से भर देती है. तो हमारे को कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हमारे को ऐसे साधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हम इनसे बच सकें. हम जैसे मास्क पे, कई बार नाक पे मास्क वगैरह लगा सकते हैं, हम अपने शरीर को बचा सकते हैं, या अपने विंडो पेन जो है उनको बंद रखें, मतलब इस तरीके से ये होता है और इनसे हमें बचना चाहिए मतलब.
तो जब हमने सॉइल पोल्यूशन की बात की है तो मैं, आपने अभी जैसे बताया सॉइल एरोजन, सॉइल एरोजन क्या है एग्जैक्टली और किस तरीके से, कितने टाइप के होते हैं ये सॉइल एरोजन
जी,
और इसका क्या इफेक्ट होता है?
डॉक्टर साहब, द प्रोसेस ऑफ डिटैचिंग एंड रिमूवल ऑफ लूजन सॉइल पार्टिकल, जब एक आपने देखा होगा जब एक पेड़ लगा होता है तो वो उसकी जो जड़ें होती हैं पूरे उस एरिया को बांधे रखती है मतलब. अब अगर आप वो मान लीजिए आप वो पेड़, अब डिफोरेस्टेशन से क्यों नुकसान होता है, क्यों डिफोरेस्टेशन कर दोगे तो आप एक तरह से सॉइल इरोजन को भी बढ़ावा देते हो मतलब. तो आप कई जगह आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में आने की छाया ठंड से बचने के लिए वो पेड़ को काट देते हैं. तो ऐसे में वो क्या होता है कि उसकी जो जड़ें जो होती हैं वो वहां से हटने लगती हैं और वहां पे एक बड़ा अजीब सा वो हो जाता है, गड्ढा सा हो जाता है और वो धीरे धीरे इस तरीके से वो फैलता चला जाता है मतलब. तो मैं डॉक्टर साहब यही कहूंगा सॉइल इरोजन के कई वजह होती हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया फ्लड से भी हो जाता है और तेज आंधी हवा से भी हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन से भी हो जाता है, विंड इरोजन जिसे आप कह सकते हैं मतलब. तो एक शीट इरोजन भी होता है जो फ्लड की वजह से एक शीट जो होती है ऊपर की अपर लेयर जो होती है वो चली जाती है. इसी तरह से एक मतलब, और आप देखिए कि फ्लड जब आता है तो मैंने कई जगह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मतलब गंगा और दूसरी नदियों में कि जब तेजी से फ्लड आता है तो एकदम कटाव होने लग जाता है. इवन आप जो लैंडस्लाइड होता है वो भी एक तरह का, वो भी एक बड़ा एग्जांपल है सॉइल इरोजन का. जब लैंड कटता है वहां पर तो आप देखिए वहां पर पूरा रास्ता रुक जाता है मतलब. तो सॉइल इरोजन के बड़े ऐसी बहुत तरह के नुकसान है मतलब. तो लेकिन इसका एक ही तरीका है डॉक्टर साहब कि वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा जहां पर भी, अब आप चंबल है, चंबल इज ए वेरी गुड एग्जांपल. जैसे कहते हैं कि मतलब वहां पर, जैसे वहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई हैबिट वो नहीं है उस तरह का,
हैबिटेशन
नहीं है जिसकी, और वहां पर मतलब कटाव होता ही रहता है मतलब, और वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी वो मध्य प्रदेश में था, अब वो आगरा आगे आगे आता जा रहा है। वो एक बड़ा चीफ एग्जाम्पल है सॉइल इरोजन का, और हमें इसको सरकार हालांकि वहां कोशिश कर रही है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा ये फॉरेस्टेशन मतलब खूब प्लांट्स वगैरह लगाए जाए, और उसका तो इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है डॉक्टर साहब।
अच्छा, तो मैं इसके कुछ कॉजेज जो आपने बताए हैं कि डिफॉरेस्टेशन एक बड़ा कॉज है इसमें, और एफॉरेस्टेशन के थ्रू हम इसको बचा सकते हैं, तो इसको और किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब अगर आप मुझे कुछ हमारे लर्नर्स को बता।
देखिए डॉक्टर साहब, मैं आज अगर मेरे को पोल्यूशन के बारे में, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया बच्चों से अपने, जैसे मैंने बताया कि देखिए अगर सॉइल इरोजन को बढ़ते देंगे तो उससे बड़ा नुकसान होता है मतलब।
हाँ।
तो
किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कुछ मेथड्स हम जानना चाहेंगे कि जैसे रूट्स होती हैं ट्रीज की, वो सॉइल मटेरियल को एक साथ रखती हैं, बांध के रखती हैं, तो देयरफॉर वी शुड प्रोटेक्ट आर, आई जस्ट वांट टू टेल आर लर्नर्स दैट वी शुड प्रोटेक्ट आर फॉरेस्ट एंड ट्रीज फ्रॉम बीइंग कटिंग डाउन, एंड एफॉरेस्टेशन मीन्स जैसे सर ने बताया, इट्स अ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन प्लेस ऑफ कट डाउन फॉरेस्ट ट्रीज, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज अलॉन्ग रिवर साइड वेस्ट लैंड एंड माउंटेनियस स्लोप्स रिड्यूसेस एक्सेसिव एरोजन ऑफ सॉइल दैट टेक्स प्लेस इन दिस रीजन, इट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग विंड एरोजन ऑल्सो। सो और क्या मतलब और किस तरीके के कंट्रोल्स हम कर सकते हैं?
देखिए डॉक्टर साहब, मैंने कई, मैं आपको, मैं बहुत आभारी महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे को एनआईओएस के माध्यम से बच्चों से हूबहू बात करने का मौका मिल रहा है, और मैं इससे बड़ी अपनी खुशफहमी समझूंगा इसको। तो मैं आपको ये जो आपने मुझसे प्रश्न किया कि हम लोग किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, देखिए मैंने जैसा भी एक शब्द, मैं पॉल्यूशन के बाद अगर किसी शब्द को मैं खुशी से बोल रहा हूँ तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। हम किसी भी चीज का अगर हम लोग उपयोग
सदुपयोग
के रूप में करेंगे तो निश्चित है कि उसके अच्छे नतीजे आएंगे। अब वो चाहे वो पानी हो, चाहे कोई भी चीज हो, एयर हो, चाहे कुछ भी हो, तो सस्टेनेबल थ्रू हम एक सस्टेनेबल मेजर्स जो है मैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से करें। जैसे कई जगह हमने देखा है कि चारागाह जो होती है पशुओं की चरने की, हमें एक नियत जगह बनाए, उनको हर जगह भी नहीं चरने दें, तो इससे क्या होगा कि वहां पर वो उस तरह का वेजिटेशन हो जाएगा और वो वहीं पर रहेंगे। लेकिन अगर हम उनको सभी जगह कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं मतलब वहां के जो सॉइल इरोजन को है वो बढ़ाएंगे बिल्कुल एकदम उनका इस तरीके से, और कंट्रोल मेजर में नहीं करेंगे तो हम लोग उनके लिए प्रोटेक्टेड चैनल्स बनाए, और ये और न सिर्फ उन्हीं के लिए, मतलब हम जो वाटर जो हमारा जो जैसे कहते हैं वाटर के लिए भी हम इस्तेमाल करें चीजों को ढंग से।
सो हमने बात की प्रोटेक्टेड चैनल्स की, फॉर वाटर मूवमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू स्टॉप सॉइल इरोजन, इफ द वाटर वेज आर प्रॉपरली मेंटेन द स्पीड ऑफ वाटर गेट रिड्यूस्ड एंड सॉइल इरोजन डिक्रीजेस, डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर्स टू कंट्रोल फ्लडिंग एंड कंसिक्वेंटली सॉइल इरोजन, दिस कैन ऑल्सो बी डन बाई डाइवर्टिंग वाटर टू ड्राई एरियाज थ्रू कैनाल्स इन अ प्लान्ड वे। अब हम बात करना चाहेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल के बारे में, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं?
बिल्कुल, देखिए जैसे इसमें आपने बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट बोला है उसमें साफ नजर आ रहा है, अगर हम उस पर उस शब्द को पूरे ध्यान से देखें, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब वो ऐसे वेस्ट जो कि बायोटिक हो, एक तरीके से समझिए आप इसको, बायो से रिलेटेड है, तो जिनमें मतलब जैसे जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको लग जाते हैं, जैसे हमारे कई सारे जैसे किचन वेस्ट है, जो किचन से निकलने वाला जो वेस्ट है, जैसे कुछ सब्जियों के छिलके हों या कुछ हो या पुरानी सब्जी, उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं उसमें, तो इस तरह से वो खुद ही उसको वो कर लेते हैं।
And that can be degraded by microbes.
हाँ, या और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जिसमें मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है जो
cannot be easily degraded.
हाँ जी बिल्कुल,
तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं?
इसमें जैसे आपकी प्लास्टिक आ जाती है, प्लास्टिक बैग्स आ जाते हैं, ग्लासेस आ जाते हैं, तो इस तरह के जो
डीडीटी वगैरह
जी जी जी
और रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डिके एंड आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स इट इज ऑल्सो अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. If a waste material is processed by some means and converted to a product, we call the process recycling. Recycling helps in efficient management of waste and also reduces the load on natural resources. Recycling से हम क्या समझते हैं, मतलब कि आजकल मैं सुनने में भी आया है कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसे reuse, recycle, इस तरीके के words हम सुनते हैं, तो रिसाइकलिंग किस तरीके से मददगार होती है कि पोल्यूशन को कम कर सके?
जी हाँ बिल्कुल, जैसे आप जैसे हम डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन का की जगह हम एफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब वहां पर खूब पौधे लगाते हैं. इसी तरीके से अगर हम जो किसी भी चीज का दोबारा प्रयोग करें, रीयूज करें, तो उसको हम लोग रिसाइकल बोलते हैं. रिसाइकल मतलब कई तरह से जैसे वो आ जाते, इफ ए वेस्ट मटेरियल is possessed by some means and converted to product,
we call the process
recycling.
cow dung isme ek example hum le sakte hain?
Yeah bilkul, cow dung jise wo dekhi waste ek tarah se animal waste tha wo, lekin humne uska recycle kiya. Lekin main fir bhi yahan pe bhi zikr karunga
uska production, usko biogas production ke liye humne use kiya.
Ji biogas production ke as a biofuel bhi aap keh sakte hain usko humne use kiya aur ghar mein aur is tarah se.
तो ये तो बात हुई हमारी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन की. अब हम बात करना चाहेंगे नॉइस पोल्यूशन की. नॉइस पोल्यूशन से क्या मतलब है और क्या क्या सोर्सेज है नॉइस पोल्यूशन के और कैसे अफेक्ट करता है और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं?
डॉक्टर साहब, नॉइस पोल्यूशन का मतलब ये है कि वो नॉइसेस, जिन वो आवाज, वो शोर जो हम नहीं सुनना चाहते या जो हमारी हमारी कैपेसिटी से बाहर है, मतलब उनको, उसको हम नॉइस पोल्यूशन कह सकते हैं. इट इज जनरली हायर इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज देन इन रूरल एरियाज. तो हम लोग इसके लिए जैसे कई मशीनों की आवाजें, कई बहुत सारे ट्रक्स हैं जिनकी आवाजें बहुत ज्यादा होती हैं, वो ओवरलोडेड हो जाते हैं, हम रास्ते में चलते तो हमारे को वो हम अपने शीशे ऊपर कर लेते हैं. तो कई बार कई लोग ज्यादा स्पीकर लगा करके गाना चलाते हुए जाते हैं, वो भी नॉइस पोल्यूशन का एक डोमेस्टिक पार्ट है, मतलब इस तरह से. तो हम इसको हम कह सकते हैं. और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे ये भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है. इवन मैं यहां तक भी कहूंगा कि अगर इसका ज्यादा उपयोग हम करेंगे तो हमारे शरीर पर उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, जिसमें हमारे को अस्थमा तक भी हो सकता है और कई उस तरह की परेशानी भी हो सकती है.
अच्छा, तो मैं अपने लर्नर्स को बताना चाहूंगी कि जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, हम उसको डेसिबल में मेजर कर सकते हैं और जो लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट ह्यूमन ईयर कैन हियर इज 20 डेसिबल. सो आपने इफेक्ट की बात की, इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन की, तो इसमें इंसोम्निया और इस तरीके की भी परेशानियां आती है?
जी डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और इस वजह से इसमें भी परेशानियां आती हैं.
सो इनएबिलिटी टू स्लीप, स्लो रिकवरी फ्रॉम सिकनेस, इरिटेबिलिटी एंड इंटरफेरेंस इन कम्युनिकेशन एंड समटाइम टेम्पररी लॉस ऑफ हियरिंग भी होता है क्या?
बिल्कुल डॉक्टर साहब, इवन आपको लॉस ऑफ हियरिंग भी होने लगता है. आप बहुत सारी समझिए कि हेडेक वगैरह होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट्स हो जाती हैं, तो इस तरह की
समस्याएं पैदा होती हैं.
समस्या
तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसकी रोकथाम क्या है इस नॉइस पोल्यूशन की?
देखिए डॉक्टर साहब, इसका हम लोग, मैं यही कहूंगा कि हम लोग कहाँ तक दोषी हैं और कहाँ तक इसको दूर कर सकते हैं. तो देखिए, जैसे हम लोग गाड़ियों में जाते हैं, हम लोग कम आवाज में गाने सुने और उतना ही हॉर्न दें जितना की जरूरत है. इमरजेंसी में आप यूं कहिए कि इमरजेंसी में आप हॉर्न दीजिए. तो इस तरीके से इवन दिवाली वगैरह में, हम लोग दिवाली में आपने देखा कितना धुआं हो जाता है, न सिर्फ नॉइस पोल्यूशन होता है बल्कि एयर पोल्यूशन भी हो जाता है. तो इतना मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे घर जो बुजुर्ग वगैरह हैं उनको सांस लेने में परेशानी हो जाती है. तो इस तरह के जो वो है, और इवन हम लोग अपनी मशीन्स वगैरह कहें उनका कंजर्वेटिव यूज करें, जैसे अब कई बार आपने देखा होगा लोग हॉर्न बजाते हुए या इस अंदाज में गाड़ी चलाते हैं जिससे कि वो शोर मचाती है. तो इवन हमें जो जो कॉलोनीज वगैरह हैं या जहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं वहां पे हमारे को फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लगानी चाहिए. और जो फैक्ट्री के हॉर्न्स हैं उनको भी मतलब बड़ा जिसे कहते हैं बड़ा
उनका लिमिटेड
यूज होना चाहिए सब.
और इसमें मेरे ख्याल से वेजिटेशन भी एक एफिशिएंट एब्जॉर्बर बनता है नॉइस पॉल्यूशन को रोकने के लिए.
जी
जैसे कि सर ने बताया कि नॉट प्ले लाउड स्पीकर ड्यूरिंग ऑड आवर्स, इट इज लीगली बैंड एंड शुड बी रिपोर्टेड टू द पुलिस इमीडिएटली. अगर आपको लगता है कि आपको उससे कुछ समस्या पैदा हो रही है और इतना हाई लेवल पे वो नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम इसके लिए पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको इस पे मतलब बैन लगाइए. अब हम बात करना चाहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग की. इन अर्लियर क्लासेस ऑल्सो यू हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस इज वॉट, मैं जानना चाहूंगी अपने एक्सपर्ट से कि ग्रीन हाउस इज एक्जैक्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या.
देखिए डॉक्टर साहब, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपने सुना है, जिस तरह से जिसमें CO2 आती है मेनली, मतलब चीप जिसे आप कहते हैं कि ग्रीन हाउसेस, वो ग्रीन हाउस गैसेस होती है. और तो ग्रीन हाउस एक पूरे की पूरी जिसे कहते हैं एक संरचना है जिसमें कि ऊपर से मतलब अल्ट्रावायलेट
रेज
आती हैं और वो हमारे को प्लांट्स को हमको सबको मिलती है और उसके बाद वो वापस लौट जाती है. तो ये मतलब एक ग्रीन हाउस वो है मतलब. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये रेज जो है, अब जिस तरह से पोल्यूशन है, हमने जो जो सस्टेनेबल यूज नहीं किया हमने अपने रिसोर्सेस का, इस वजह से कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी होगी डॉक्टर साहब कि हमें ये समझ नहीं आता है कि मतलब वो पोल्यूशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो ग्रीन हाउसेस गैसों का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से वो रेस वापस नहीं जा रही है और वो अंदर रुक रही है, जिसकी वजह से पूरे
ग्लोबल वार्मिंग टाइप का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है.
जी
एवरेज टेम्परेचर से
जी
इंक्रीज होके वो टेम्परेचर बढ़ रहा है.
टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहे हैं. मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग तो हमारा तो देश बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो होता भी ऐसा. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें नॉर्वे कंट्री है, वो एक छोटी कंट्री है, लेकिन आप उसके उसको मतलब उसका अगर मैं बताऊं कि 15% पार्ट जो है पूरी एक आइलैंड कंट्री है उसका पूरा. मैं अभी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस में था दिल्ली सस्टेनेबल, तो मैं वहां पे उन वहां के प्रेसिडेंट्स वगैरह आए हुए थे. तो मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब वो कितना, हालांकि उनका शेयर पोल्यूशन में कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग में उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन हम जो बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसकी वजह से इन छोटी छोटी कंट्रीज को बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं. और मैं आपको जैसे नौरू है, मालदीव है, इनके बहुत सारे एरियाज में पानी भर गया, मतलब जो जो बाहर जो बॉर्डर इनके जो है, मतलब जो आइलैंड बॉर्डर्स है उनमें पानी भर गया, मतलब बिल्कुल वो डूब सी रही है मतलब. और 2 मिलीमीटर के हिसाब से वहां पर ईयर मतलब वो डूबते चले जा रहे हैं. इवन आपको अपनी कंट्री में मैं बताऊं, कुछ कैलकाटा जैसे सिटीज हैं उसमें भी कुछ ऐसा मतलब हो रहा है मतलब. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे को जैसे ग्रीन हाउस जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने बताया, तो इसको भी हम लोग अगर ये जो इसकी वजह से जो हमारे पोलर आइस शीट्स हैं वो मेल्ट हो रही है. और जम्मू कश्मीर, अभी मैं आपको उसी कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला, जो इस समय रिन्यूएबल मिनिस्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है, वो कहते थे कि कहते हैं कि मैं जब शुरू में जब 1970s में मैं जब वो चीफ मिनिस्टर बना, जब मैं हवाई दौरों में मैंने देखा कि बहुत सारे ग्लेशियर मैं देखता था, लेकिन आज वो कहते हैं कि मैं वहां पर जब जाता हूं तो वहां कोई ग्लेशियर नहीं है. तो एक लोकल जो मतलब वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर, जो कि हमारा पूरा जिसे कहते हैं कि पूरा हिमालयन स्टेट है पूरी तरीके से, पूरी कंट्री वो है मतलब, तो वहां के जब वो इस तरह से, तो ये सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वार्म होने लगा है माहौल, उसकी वजह से ये नुकसान हो रहे हैं. और इसको अगर हमें इसको हमें दूर करना है तो हमारे को जो इसका फॉसिल फ्यूल्स जो है उनका बहुत ही लिमिटेड यूज करना पड़ेगा, जैसे पेट्रोल डीजल है, और इनकी बजाय हमारे को जो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी है हमारे को, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, कि आने वाले समय में हमें रिन्यूएबल एनर्जी जो है जैसे सोलर है, बायोफ्यूल्स है, हमारे को इनका यूज बढ़ाना चाहिए।
अच्छा।
हम बहुत सारे पोल्यूशंस को हम इन्हीं के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और जैसे विंड पावर है, विंड पावर एक बहुत बड़ा मेजर रिसोर्स भी है और सोर्स ऑफ इनकम भी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज बहुत सारी स्विट्जरलैंड की कंपनी है वो भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसमें वो कर रही है। और इसका और उसका एक और बढ़िया तरीका है डॉक्टर साहब कि हम लोग पेड़ों को लगाएं, यानी कि एफॉरेस्टेशन हम ज्यादा से ज्यादा करें, जिसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग को दूर कर सकते हैं।
तो ये बात हुई हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। मैं रिवाइज करना चाहूंगी ग्लोबल वार्मिंग में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से ये बढ़ रही है। उसमें जैसे कि सर ने जिक्र किया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन होम्स, इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, बायोमास बर्निंग इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विच एड्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमोसफेयर, मार्शेज, पैडी फील्ड, कैटल शेड्स एंड बायोगैस प्लांट्स एड मीथेन टू द एटमोसफेयर, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एमिट क्लोरोफ्लोरोकार्बन टू द एटमोसफेयर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर एडेड टू द एटमोसफेयर बाय ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलाइजर बाय डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया एज वेल एज ऑटोमोबाइल्स। सो वट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट सीवियरली अफेक्ट्स द crop pattern, it also increases the surface temperature. Due to increase in surface temperature, the parasites and pests will get adequate temperature to survive, leading to an increase in their numbers. This will reduce to the crop production, and there will be more incidences of plant, animal and human disease. And due to this increased temperature of Earth's atmosphere, the precipitation of water will increase. This will decrease the soil moisture content and lead to frequent downpours also. Now we will discuss about the ozone hole. Ozone hole. आए दिन हम newspapers में इनके बारे में पढ़ते भी हैं कि there is a depletion of ozone layer. क्या है ये ozone hole?
डॉक्टर साहब, हमारे जो हमारा वातावरण है उसमें ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर है उसकी, जो ओजोन लेयर प्रेजेंट्स इन द अर्थ एटमोस्फेयर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सर्फेस। तो ये सबसे टॉप मोस्ट एयर लेयर होती है मतलब, और जो हमारे को अल्ट्रावायलेट जो उससे बचाती है मतलब, उसके एक्सेसिव उससे बचाती है मतलब,
एक्सेसिव एक्सपोजर से।
जी जी। तो ये भी हमारी देन है डॉक्टर साहब, जो हमारे पावर प्लांट से जो गैसेस बहुत बड़े पैमाने पर निकल रही, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, चाहे वो हमारे पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट्स हो, या किस गैस बेस्ड पावर प्लांट हो, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हो, ये सब हमारे एक्सेसिव यूज की वजह से एक बड़े पैमाने पर ओजोन, इवन आपको मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे देश हैं एक दूसरे को इसी बात को कहते हैं कि आपने ज्यादा यूज कर लिया, आप ज्यादा आपके पावर प्लांट ज्यादा रेडिएशन जो एमिट कर रहे हैं मतलब इस चीज को। तो इस लेकिन मैं जो मैं कहना चाहूंगा कि खास तौर पे इसको जिसे सीएफसी जो कहते हैं,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
जी हाँ, इसके एक्सेसिव यूज से ज्यादा भी इससे भी बहुत नुकसान हुआ है, जैसे रेफ्रिजरेशन में हो, एसीज में हो, एयर कंडीशनिंग में हो,
फायर एक्सटिंग्विशन में हो, और स्प्रेज वगैरह में, परफ्यूम्स वगैरह में जो यूज होते हैं। तो जिस तरीके से अगर इसके डिप्लीशन से क्या फर्क, हम आपने जैसे बोला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रिवेंट करती है
जी।
तो ये कैसे मतलब इफेक्ट करती है अगर इसका डिप्लीशन हो जाए ओजोन लेयर का
जी,
तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं?
देखिए डॉक्टर साहब, ये
मेरे
बड़ा
ख्याल से मैंने सुना भी है कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी इसकी वजह से हो जाते हैं, और जैसे हमने बात भी की है कि रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी एट सी एंड फॉरेस्ट लेवल आल्सो, और सन बर्न भी मेरे ख्याल से इससे होता है। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता
है? देखिए डॉक्टर साहब, अभी तो इसमें जहां तक प्रिवेंशन का सवाल है, इसमें हम यूज जो है उसका लिमिटेड यूज पे मैं कहूंगा कि हम लोग अपने फायर प्रिवेंट, जैसे आपने बताया कि मतलब एसीज वगैरह हैं और स्प्रेज वगैरह हैं, इन्हीं के यूज को हम कम करें तो थोड़ा सा, बल्कि हम प्रिवेंट तो मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हम उसके डिप्लीशन को रोक सकते हैं मतलब. तो हालांकि हम जैसे प्रोडक्ट जैसे एफॉरेस्टेशन के थ्रू इसको भी कम मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी वजह से एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट रेज आने की वजह से आपको बता रहा हूँ कि जो लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसमें भी बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है मतलब. और इवन मैं आपको बताऊँ समुद्र जो एक्वाटिक लाइफ है, जो हमारी जो सी लाइफ है, जो ओशियन लाइफ जो है, उसपे भी बहुत ज्यादा मछलियां वगैरह जो है अंदर ही, मतलब बड़ी बड़ी मछलियां और कई सारे, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, कई सारा जो स्पीशीज है, एक्वेटिक स्पीशीज है, वो लगभग अब उनका उस पर कगार डिमिनिश्ड हो रही है. और तो अल्ट्रावायलेट देखिए, हमारी एक्सेसिव यूज की वजह से उन लोगों को भी इसमें मतलब नुकसान हो रहा है जिनका इसमें कोई रोल नहीं था मतलब.
तो डेवलपमेंट इज नेसेसरी बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट. एसिड रेन, अब हम बात करना चाहेंगे एसिड रेन के बारे में, विच अकर्स ड्यू टू दिस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड अंडरगो वेरियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एब्जॉर्ब बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड. दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड इन रेन क्लाउड्स. द ड्रॉपलेट देन फॉल टू अर्थ एज रेन, स्नो और मिस्ट. इफ रेन फॉल्स थ्रू पॉल्यूटेड एयर, इट इज थ्रू पॉल्यूटेड एयर इट पिक्स मोर ऑफ दीज गैसेज एंड इंक्रीज इट्स एसिडिटी. दिस इज कॉल्ड एसिड रेन. सो किस तरीके से एसिड रेन अफेक्ट करती है?
जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊँ की एसिड रेन, जैसे आपके बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड इसमें मेन, इवन मोनोऑक्साइड ऑल्सो, लेकिन ये दोनों ही अफेक्ट करती है. और ये बायो जो हमारे नेचुरल फॉसिल्स जो फ्यूल्स हैं, उनके ही यूज की वजह से ये होता है. जब हम इनका ज्यादा यूज करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो हमारे जो कण है
वाटर वेपर्स के साथ मिल
करके वो करते हैं उसको, और फिर किसी जगह पे भी बरसात करती है और इसके बहुत नुकसान होते हैं.
ताजमहल मेरे ख्याल से इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ताजमहल की वजह से जो मतलब इस एसिड रेन की वजह से ताजमहल की जो खूबसूरती है
जी,
वो नष्ट हो रही
है. जी नष्ट हो रही है, और सरकार ही चाहती है कि उसके आसपास जो फैक्ट्रीज हैं उनको वहां से वो किया जाए, जिसकी वजह से इस किस्म की और हमारी जो बेशकीमती हेरिटेज है उसको बचाया जा सके मतलब.
तो जो एसिड रेन है तो ये कहीं ना कहीं एसिडिफिकेशन ऑफ लेक्स में जो क्या कहते हैं
बिल्कुल
जो नदियों में एक एसिडिफिकेशन लेवल बढ़ा देती होंगी, और बिल्डिंग मटेरियल्स की जैसे हमने बात की मॉन्यूमेंट में ताजमहल की हेरिटेज बिल्डिंग्स की स्टैच्यूज की, तो ये कहीं ना कहीं इसको इफेक्ट करता है. और समवेयर इट अफेक्ट्स द एक्वेटिक एनिमल्स, डैमेज टू प्लांट्स, ह्यूमन हेल्थ बाय लाइक मे कॉज इलनेस इन ह्यूमन्स एंड इट डैमेजेस द सॉइल ऑल्सो, बिकॉज इफ इट सॉइल बिकम एसिडिक इट मे कॉज मिनरल न्यूट्रिएंट टू बी वॉश्ड अवे. इट कैन रिलीज टॉक्सिक केमिकल्स सच एज एल्यूमिनियम एंड मर्क्यूरी इनटू द सॉइल. दस एसिड रेन कुड मेक सॉइल लेस फर्टाइल. और भी कुछ अदर इनके दूरगामी मतलब परिणाम होते हैं. अब हम बात इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन को हम इसको रोकना चाहिए. और कोल कैन बी क्रश्ड एंड वॉश्ड बिफोर रनिंग एंड ऑयल कैन बी ट्रीटेड टू रिमूव सल्फर. अब हम बात करना चाहेंगे समय की थोड़ी शॉर्टेज की वजह से हम अपने इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करना चाहेंगे. मैं अपने लर्नर से कहना चाहूंगी कि जो हम आज जो हमने प्रदूषण के बारे में बात की उसके उसका जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है हम खुद। मैं कहना चाहूंगी कि हमें डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम इन सब चीजों पे गौर देते हैं, करते हैं, उन सब चीजों पे गौर करते हैं, बट वी मस्ट से दिस कि डेवलपमेंट इज रियली नेसेसरी बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू आवर लर्नर्स, थैंक यू।